वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हम आपके लिए प्रोग्राम पेश कर रहे हैं राउंड टेबल। ये प्रोग्राम नशे मुकर्रर है और आप पहले भी सुन चुके हैं।
अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से आज की राउंड टेबल के साथ मैं हूँ यास्मीन जमील। आज हम पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के एक इंतहाई अहम मसले पर गुफ्तगू कर रहे हैं और वो मसला है खुराक और खुराक की सेफ्टी का। पाकिस्तान दुनिया भर में मयारी खुराक पैदा करने वाले अहम मुल्कों में शामिल है, लेकिन इसके बावजूद मुल्क में लाखों लोग मयारी खुराक से महरूम हैं और लाखों अफराद, खासतौर पर ख्वातीन और बच्चे, गजाइत की किल्लत का शिकार हैं। आखिर ऐसा क्यों है और पाकिस्तान में खुराक और गजाइत की किल्लत के मसले को कैसे हल किया जाए, ये हैं वो मौजूआत जिन पर बात करने के लिए हमने आज की ये राउंड टेबल तरतीब दी है, जिसमें बात करने के लिए हमने खुराक की सेफ्टी और गजाइत से मुतालिक मुक्तदर माहरीन को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। हमारे साथ हैं पाकिस्तान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर जहूर, जो इस वक्त वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इस्लामाबाद के साथ खुराक के तहफ़ से मुतालिक एक प्रोग्राम से वाबस्ता हैं। हमारे साथ हैं ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रहीम यार खान के फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद फरहान जहांगीर चुगताई। हमारे साथ हैं एरिड यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के प्रोफेसर डॉक्टर अनवार मलिक। और हमारे साथ अब से कुछ देर के बाद होंगे डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड सेफ्टी अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान यूनुस। हमारे साथ होंगे ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के ORIC शोबे के डायरेक्टर डॉक्टर एम सैफ रहमान रहीम यार खान से। और हमारे साथ मौजूद होंगे क्वालिटी एंड रेगुलेटरी अफेयर्स पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन इस्लामाबाद के सरबराह और एक फूड साइंटिस्ट डॉक्टर अनीस कुरैशी, जो खलीज और पाकिस्तान में डेयरी और मशरूबात की इंडस्ट्रीज में नुमाया खिदमत अंजाम दे चुके हैं। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। पाकिस्तान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर जहूर से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ताहिर जहूर साहब।
जी वालेकुम सलाम जी,
बेहद शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हमारे सुनने वालों को बताइए कि पाकिस्तान में जो खुराक पैदा करने के मामले में दुनिया में एक बेहतर मकाम रखता है, ऐसा क्यों है कि लाखों लोग रात को भूखे सोते हैं और ऐसा क्यों है कि वहाँ लाखों लोग गजाई किल्लत का शिकार हैं, तो वहाँ खुराक की सिक्योरिटी और सेफ्टी की सूरत हाल क्या है, इस पर रोशनी डालिए।
जी बहुत शुक्रिया यासमीन जमील, आपने बहुत अहम टॉपिक पे जो है ना वो बात का आगाज किया। जिस तरह से वर्ल्ड फूड डे के हवाले से हम तो इस चीज़ को जो है ना वो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोगों ने भी इसको जो है ना वो टेकअप किया। सबसे पहले तो मैं आपको फूड सिक्योरिटी के हवाले से बताना चाहूँगा कि फूड सिक्योरिटी का जो मतलब है ना एक्चुअली वो ये है कि किसी भी वक्त तमाम इंसानों को दुनिया में उनकी एक वाफर मकदार में खुराक जो कि गजाइत से भरपूर और सेफ हो उनको मिलनी चाहिए एक सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए।
ठीक,
यहाँ मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा इसमें कुछ हमारे जो है ना वो ऐसी टर्म्स जिसको बोला जाता है लाइक फूड स्टेबिलिटी। अब फूड स्टेबिलिटी जो है ना वो दैट रेफर्स के अबिलिटी टू ऑब्टेन फूड ओवर द टाइम, यानी कि जो कि हर वक्त अवेलेबल हो उसको जैसे स्टेबिलिटी कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें गंदम है जो कि पाकिस्तान में एक स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है। दूसरा है फूड एक्सेस जो कि रेफर करती है कि आप कितना उसको अफोर्डेबल है आपके लिए और उसकी एलोकेशन जो है ना वो फूड की किसी भी इंडिविजुअल को या हाउस होल्ड लेवल तक जो है वो कितनी मुयस्सर है। तीसरे नंबर पे उसकी फूड की अवेलेबिलिटी, उसका मतलब ये कि रिलेट टू सप्लाई ऑफ फूड थ्रू प्रोडक्शन और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केट में और फिर कंज्यूमर तक। ये तीन चार फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इनके फैक्टर्स का जो है ना वो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोगों पे इनके असरात मुख्तलिफ होते हैं। अब इसमें आप देखें कि जब ये फैक्टर्स आते हैं तो इनमें इश्यूज आगे क्या आते हैं, कुछ लोग तो जो है ना वो अफोर्डेबल नहीं कर सकते, कुछ लोगों में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं पाकिस्तान की जहाँ पे फूड जो है ना वो पहुँच ही नहीं पाती, क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो पहुँचना मुश्किल होता है, लेकिन ये नो डाउट कि वहाँ पे इंसानियत है, वहाँ पे पहुँचने की जरूरत भी है जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज को जो है ना वो आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब इसमें फूड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो इसमें जो इश्यूज हैं पाकिस्तान में, एक तो सबसे पहला लिटरेसी रेट है जो कि 57% जिसमें जो है ना वो लोगों को, बहुत सारे लोगों को तो इलम ही नहीं है कि हम फूड अगर यहाँ से मुयसर नहीं है कहाँ से हासिल कर सकते हैं, या उसकी मैनेजमेंट या उसकी सप्लाई चेन को कैसे वो प्रॉपर कर सकते हैं, तो थोड़ी सी यहाँ पे गैप्स हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में हाई माल न्यूट्रिशन रेट है, जो कि गजाइत की कमी जो है ना, जो स्टंटिंग है वो 44% है और वेस्टिंग जो है वो तकरीबन 15% है, जैसे कि नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2011 का जो डेटा हमें बताता है। इसके अलावा हिडन हंगर है, लोगों को पता नहीं है कि उन्होंने खाना क्या है, जिसको हम कहते हैं कि ज़रूरी अज्जा, जिसमें जो है ना वो ट्रेस एलिमेंट्स कैल्शियम पोटाशियम और उसके अलावा वाइटामिन एंड मिनरल जिन्हें कहते हैं, वो माइक्रो एलिमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ और प्रॉपर सस्टेनेबिलिटी के लिए, उन लोग उनको जो है ना वो सही तरह से टेकअप नहीं कर पाते। ये कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से लोग वन वे और दी अदर वे वो फूड सिक्योरिटी से जो है ना वो महरूम रहते हैं। तो इसमें ऐसी जगह पे आके हमें जरूरत है कि कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी बने, जैसे कि सिंध का इलाका है
जी,
बलूचिस्तान का इलाका है,
तो
माल न्यूट्रिशन के रेट ज्यादा।
जी जी, डॉक्टर ताहिर साहब, हम डॉक्टर ताहिर साहब हम आपसे अब इस बात पर भी आगे बढ़ेंगे कि क्या कुछ होना चाहिए, लेकिन पहले हम उनके असबाब पर गौर कर लें कि आखिर गजाइयत की किल्लत क्यों है, आखिर खुराक लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही। आपने कुछ पॉइंट्स दिए कि एक तो गुर्बत है, एक एजुकेशन की कमी है, लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त जो मैं पॉइंट उठाना चाहूँगी वो ये कि बावजूद इसके कि लोगों को लोगों की इतनी इस्तात है कि वो खुराक हासिल कर सकें, लेकिन इसके बावजूद भी जो ग़िज़ा उनको मिलती है वो मयारी नहीं होती, वो मिलावट वाली होती है। पाकिस्तान में खास तौर पर ये बहुत बड़ा मसला है कि
दो चीजें हैं ना। मैं इसको इस तरह से जो है ना वो फूड सिक्योरिटी के बाद इसको बाइफरकेट करूंगा फूड सेफ्टी में, एंड देन अल्टीमेटली न्यूट्रिशन। जो फूड सेफ्टी है वो जो है ना मियार के मुताबिक अगर ना हो तो फूड अनसेफ्टी होती है ना। वो फूड सेफ्टी में तो हम ये कहते हैं कि जी हर बंदे को गजाइत से भरपूर खुराक, महफूज खुराक मिलनी चाहिए, जो कि किसी भी जरासीम से पाक और किसी भी डिजीज के जो है ना वो बायस ना बन सके।
जी जी,
उसमें वो फूड सेफ्टी के हवाले से अब पाकिस्तान के जो ट्रेडिशनल सिस्टम थे पहले, वहां पे तो उन दौर में, पुराने दौर में तो जो है ना लोगों का बिल्कुल भी कंसेप्ट नहीं था, लेकिन आज के दौर में ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, जिसमें हमारा इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट जो है ना वो नंबर वन है, जिन्होंने 2000 में ये पॉइंट्स उठाए फूड सेफ्टी और अथॉरिटी के एस्टेब्लिशमेंट के,
ठीक,
और अल्हम्दुलिल्लाह उसके सिलसिले में तसलसल में जो है ना वो 2011 में जाके जो है ना ये पंजाब फूड अथॉरिटी का पूरा क्याम हुआ और उसके स्टैंडर्ड वगैरह। लेकिन आज आप अगर देखें चंद सालों में पंजाब फूड अथॉरिटी, जो कि सबसे पहले लीड ले चुकी है पाकिस्तान में सेफ फूड प्रोवाइड करने के लिए, आज आपको हर शहर में नजर आएगी, वहां पे जाके वो लोग चेक भी करते हैं फूड को, उसके
डॉक्टर साहिब साहब ये
बिल्कुल
आपने सही कहा, हम इस पर भी आएंगे। हमारे साथ अभी कुछ देर के बाद मौजूद होंगे कैप्टन रिटायर्ड उस्मान यूनुस भी, जो पंजाब फूड बल्कि हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड उस्मान यूनुस साहब, पंजाब फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए पहले उनको गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में फूड की जो पॉलिसी है सेफ फूड सेफ्टी की, वो क्या है और उस पर अमल दरामद की क्या सूरत हाल है। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उस्मान यूनुस साहब।
जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आज इकट्ठा किया है। उसकी मुनासिबत भी है वर्ल्ड फूड डे के हवाले से, और मेरा ख्याल है कि पंजाब फूड अथॉरिटी आज पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा काम कर रही है जो अनप्रेसिडेंटेड है, और इसका डेफिनेटली क्रेडिट जो है वो हमारे उन तालीमी इदारों को जाता है जिनके प्रेशर में या जिनकी कहने पर या जिनके वजह से या जिनके जोर लगाने से हुकूमत ने ये इदारा कायम किया।
तो क्या पहले आप
किया गया, तो
यूनुस साहब आप पहले सबसे पहले बताइए कि फूड सेफ्टी की पॉलिसी क्या बन चुकी है पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, और अगर वो है तो उसमें क्या जाब्ते हैं उसके, और उन जाब्तों पर किस हद तक अमल हो रहा है।
जी मैं एक्चुअली यही आपको चाह रहा था कि मैं ब्रीफ कर दूं। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पंजाब फूड अथॉरिटी का जब क्याम सन 2011 में आया, तो उससे पहले 1960 के हमारे प्योर फूड रूल्स हुआ करते थे, जिनके मुताबिक जो है वो मुख्तलिफ जो खाने पीने की अशिया है उनको उनके स्टैंडर्ड्स का तयन करके उनको रेगुलेट किया जाता था, और वो इतना ज्यादा पॉपुलर निज़ाम नहीं था, जिसकी वजह से ये महसूस किया गया कि एक इंडिपेंडेंट इदारा तश्कील दिया जाए जिसमें एक साइंटिफिक पैनल कंसीव किया गया, जिसमें तमाम जो हमारे एकेडेमिया है, जिसमें तमाम जो साइंटिस्ट्स हैं, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, मुख्तलिफ बिजनेस से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, हमारे जो रिसर्च से एसोसिएटेड लोग हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इस फील्ड में काम कर रही हैं और हमारा जो प्रोड्यूस कर रही हैं हमारे फूड टेक्नोलॉजिस्ट मार्केट में, उन पे मुश्तमिल एक साइंटिफिक पैनल जो है वो कंसीव हुआ उस कानून के अंदर, जिस साइंटिफिक पैनल ने मुख्तलिफ रेगुलेशन बनाने थे या स्टैंडर्ड्स का तयन करना था मुख्तलिफ फूड कमोडिटीज के लिए। तो उसके नतीजे में एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड्स का सेट तैयार हुआ जो कि हम दो दफा रिवाइज कर चुके हैं। इन साइंटिफिक पैनल के अंदर हमारे पास 30 से ज्यादा PhDs मौजूद हैं और वो भी मुख्तलिफ फूड कमोडिटीज के ऊपर गाइड करते हैं। इस वक्त 16 डिफरेंट कैटेगरीज के फूड्स को ना सिर्फ हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं बल्कि उनके स्टैंडर्ड्स को अपने साइंटिफिक पैनल के जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी मदद से उनको नोटिफाई करके उनको ये तो पहला पार्ट हो गया कि हमने उसका प्रोसेस आइडेंटिफाई कैसे किया, यानी सबसे पहले हमारे साइंटिफिक पैनल ने इनके स्टैंडर्ड का तायुन किया। उसका सेकंड पार्ट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन। इंटरेस्टिंगली लॉज तो शायद इससे पहले भी मौजूद थे लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी शायद रोबस्ट तरीके से नहीं होती थी। मेरा ये ख्याल है कि जो बाकी प्रोग्राम में मेहमान है आप उनसे भी ये बात जरूर पूछिएगा। पंजाब फूड अथॉरिटी का हॉलमार्क ये है कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने उन रेगुलेशन के ऊपर अमल दरामद करवाया, यानी कि जैसे कंसीव किया हमारे साइंटिफिक पैनल ने उस तरह से उसकी इम्प्लीमेंटेशन मुमकिन बनाई गई। पहली दफा पंजाब में ये देखने में आया कि फूड स्टैंडर्ड को अक्रॉस द बोर्ड इम्प्लीमेंटेशन मिली, खा वो छोटा बिजनेसमैन था, शायद खा वो बड़ा था, खा वो मल्टीनेशनल कंपनी थी, हमारे जो स्टैंडर्ड्स थे वो सबके लिए बराबर थे और हमारे कानून जो है वो सबके ऊपर अभी भी बराबर इम्प्लीमेंट होते हैं। हम अपने तमाम स्टैंडर्ड्स को अक्रॉस द बोर्ड इम्प्लीमेंट करते हैं और आज पंजाब के हर जिले के अंदर पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो आपको काम करती हुई नजर आ रही है। अगर आप छोटे बिजनेसेस की बात करें तो छोटे बिजनेसेस को भी रेगुलेट कर रहे हैं, बड़े बिजनेसेस की बात करें तो उनको भी रेगुलेट कर रहे हैं। जितनी भी फूड कैटेगरीज हैं, जो पैकेज फूड है उसकी सालाना इंस्पेक्शन का शेड्यूल है, जो अनपैकेज है उसको हम रूटीन में इंस्पेक्ट भी करते हैं, और जहां कहीं सेफ्टी के ऊपर किसी किस्म का कोई वायलेशन मिले तो जब तक करेक्टिव मेजर ना लिए जाए तब तक उन फूड्स को दोबारा मार्केट में नहीं आने दिया जाता, और अगर किसी जगह पर कोई कमोडिटी जो है वो सेफ्टी के टेस्ट को फेल करती है तो उसको फौरी तौर पर मार्केट से न सिर्फ रिमूव किया जाता है बल्कि जो फूड बिजनेस है उसको इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर के तहत बंद करके वो करेक्टिव मेजर्स लेने के बाद उस फूड को दोबारा प्रोड्यूस करने की इजाजत दी जाती है। इसलिए हम आपको बेतहाशा मिसालें दे सकते हैं, जिसमें हमने पानी की जो सैंपलिंग है वो मुमकिन बनाई है। साल में 4 दफा हम तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स को चेक करते हैं, डेयरी इंडस्ट्री को हम साल में 4 दफा चेक करते हैं, मुख्तलिफ जो मसाला जात है उनको हम चेक करते हैं। मैं आपको एक और बड़ी मजे की बात बताऊंगा कि पंजाब फूड अथॉरिटी में राजस्थान में बल्कि इस पूरे के पूरे खत्ते में पहली दफा मसाला जात को पैक करवाया, यानी कि जो खुले मसाले होते थे यहाँ पर मसाले खुले बिका करते थे, उन मसालों को एक रेगुलेशन के तहत हमने पैकेज किया और उसको पैकेज करने से सबसे पहले हमें ये फायदा हुआ कि हमने उसकी हाइजीन को इंश्योर किया, दूसरे नंबर पे हमने उसकी ट्रेसेबिलिटी क्रिएट की, तीसरे नंबर पे हमने उसकी एडल्ट्रेशन को भी कंट्रोल किया, बिकॉज जब ट्रेसेबिलिटी नहीं होती थी तो इस बात का पता लगाना बिल्कुल तकरीबन नामुमकिन होता था कि उसमें एडल्ट्रेशन कौन कर रहा है। आमतौर पर मसालों में रंग की और मुख्तलिफ किस्म की एडल्ट्रेट्स डाले जाते थे मसालों की तादाद को बढ़ाने के लिए, और उसमें केमिकल ग्रेड कलर भी लाया जाता था उसको डिफरेंट टेक्सचर देने के लिए या डिफरेंट रंग देने के लिए। तो जब हमने उनको पैकेज करवाया तो ना सिर्फ हमने उसको सेफ किया फ्रॉम हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू, बट हमने उसको सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेफ किया, और साथ साथ हमने उसकी ट्रेसेबिलिटी क्रिएट की ताकि वो कहाँ बन रहा है, किन कंडीशन में बन रहा है, कब बनाया गया है, कब उसने एक्सपायर होना है, ये मुमकिन हो। ये बहुत चैलेंजिंग काम था हमारे लिए क्योंकि पाकिस्तान में, पंजाब में बिलखसूस, इस रीजन के अंदर मसालों को हाथ से चेक करके खरीदने का रिवाज था। तो इस रिवाज को तोड़ा और लोगों को एजुकेट किया और जो फूड बिजनेसेस थे उनको भी कन्विंस किया कि उन्होंने ये काम करना है। साइंटिफिक पैनल को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ना सिर्फ इस बात को आइडेंटिफाई किया कि ये जो खुले मसाले हैं ये हमारे ہمارے لیے بہت بیماریوں کا باعث بن رہے ہیں, خاص طور پہ معدے کی بیماریوں کا باعث بن رہے ہیں, اور نہ صرف اس بات کو پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا بلکہ اس پرابلم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پائپ لائن میں مزید کام ہونے والے ہیں اس پہ جو بہت بڑا کام ہمارے ذمے ہے وہ کھلے دودھ کی ترسیل کو ریگولیٹ کرنا ہے, جس کے لیے ہم نے منیمل پاسچرائزیشن کا قانون بنایا ہوا ہے, جس کے لیے ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم سن 2022 میں کھلے دودھ کی ترسیل جو ہے اس کو بھی ریگولیٹ کریں گے, اور اس کو بھی ممکن صرف یہ تبھی ممکن ہوگا جب اس دودھ کو کسی جو ہے وہ پیکیجنگ کے تحت جو ہے وہ بیچا جا سکے گا اور پاسچرائز کر کے بیچا جائے گا, کیونکہ دودھ اب ایک ایسا چیلنج ہے ہمارا جس میں کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ دودھ کی جو اس وقت جو موجودہ کنڈیشن ہے کھلی شکل میں جب وہ جاتا ہے تو نہ صرف اس میں ایڈلٹریشن ہوتی ہے, وہ ان سیف بھی ہوتا ہے اور اس میں بہت قسم
کے ایڈلٹرز جو ہے. بالکل, دودھ کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ پانی کی فلٹریشن جو پلانٹس ہیں ان کو بھی آپ چیک کرتے ہیں, اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ پاکستان میں خاص طور پر پنجاب میں تو بہت ہی صورتحال ٹھیک ٹھاک ہو چکی ہے, اور انشاءاللہ اگر آپ ایسے ہی کام کرتے رہے تو ضرور ہوگا. محمد عثمان یونس صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے, ہم نے آپ کو اس لیے پروگرام میں پہلے شامل کر لیا کہ آپ کو شاید زیادہ دیر آپ ہمارے پروگرام میں نہ بیٹھ سکیں, ورنہ ہم نے پہلے تو بات کرنی تھی کہ وجوہات کیا ہیں, ایسا کیوں ہے کہ لوگوں کی صحتیں خراب ہو رہی ہیں, معیاری خوراک کیوں نہیں مل رہی. تو اس سلسلے میں اگر آپ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر اور بیٹھیں تو ہمارے جو مہمان ہیں وہ بھی ممکن ہے آپ سے کچھ سوال کریں, اور ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے جو جواب دیں وہ ہمارے عام سننے والوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں. گفتگو میں ہم اس وقت ہم شامل کریں گے یونیورسٹی, ہاں ایرڈ یونیورسٹی راولپنڈی کے فوڈ سائنس اینڈ نیوٹریشن کے پروفیسر ہیں ڈاکٹر انوار ملک. السلام علیکم ڈاکٹر انوار ملک صاحب.
جی وعلیکم السلام.
تو پہلے ہم نے حل بتا دیے یونس صاحب نے, لیکن ہم اپنے سننے والوں کو یہ ضرور بتانا چاہیں گے اور آپ کے تھرو بتانا چاہیں گے کہ جب غیر معیاری اور خالص غذا نہیں ملتی اور ملاوٹ والی خوراک ملتی ہے تو لوگوں کی صحتوں پر, خاص طور پر بچوں اور خواتین کی صحت پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس وقت پاکستان میں, اور یہ مسئلہ کتنا سنگین بن چکا ہے.
جی بہت شکریہ آپ نے مجھے چانس دیا. سب سے پہلے میں کیپٹن عثمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں سلیوٹ کرتا ہوں کہ جتنی محنت اور لگن سے یہ فوڈ سیفٹی کو انشور کر رہے ہیں, پاکستان کو انہوں نے ایک رول ماڈل بنا دیا ہے. میں خود ان کے فوڈ اتھارٹی سائنٹیفک پینل کا ممبر ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ کتنی کیئر اور کتنی کوشش سے یہ اسٹینڈرڈ بنوا رہے ہیں ہم لوگوں سے اور کس طرح ان کو امپلیمنٹ کروا رہے ہیں. جہاں تک بات ہے بیماریوں کی اور ملاوٹ سے جو یہ اپنا جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں, اس میں سب سے پہلی بات دودھ کی میں ابھی کیپٹن عثمان صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. تو دودھ میں جو ملاوٹ ہو رہی تھی اس کا واحد حل یہی تھا کہ اس کو آپ پاسچرائزیشن کی طرف لے جائیں. اس سے میرے ایک دو آرٹیکل بھی آ چکے ہیں, ہم دیکھیں گے. اور دودھ میں مور دین 17 سے زیادہ جو ہے ملاوٹ شدہ چیزیں آتی ہیں, اور اپنا جو ایسے آتے ہیں کہ جو دودھ زیادہ دینے والی جو ڈرگز ہیں, جو ہارمونز ہیں وہ آتے ہیں, اور اس میں ہمارے جو بچیاں ہیں ان کو پرابلم, ہارمونل ایشوز پیدا ہو رہے ہیں ان کے لیے, لیور پرابلمز آ رہے ہیں, کڈنی پرابلمز آ رہے ہیں. تو یہ ایک دودھ کی ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں کہ جو مسالہ جات اور جو یہ آئل جو اوور اس کی جو فرائنگ ہوتی ہے, میکسیمم ہم نے جو ایکسپیریمنٹس کیے ہیں 7 فرائنگ تک جو چینولا آئل ہے اس کو ہم فرائی کر سکتے ہیں 27 فرائنگ, لیکن یہاں پہ دیکھا جائے گا کہ بہت زیادہ فرائڈ آئل اور اس میں جو پولر کمپاؤنڈ ہوتے تھے وہ کارسینوجینک ان نیچر وہ بن جاتے تھے, اور لوگوں کو جو ہے بیماریاں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں یہ فوڈ اتھارٹی جب سے ایکٹیو ہوئی ہے وہ اس کے بعد یہ جو ریشو ہے ان بیماریوں کی کم ہوتی جا رہی ہے, یہ ہارمون سے ریلیٹڈ جو بیماریوں کی کم ہے, اور یہ میں کریڈٹ دوں گا پنجاب فوڈ اتھارٹی کو, اور اس کو رول ماڈل بناتے ہیں کہ ہمارے صوبے یہی اسٹینڈرڈ فالو کر رہے ہیں, یہ ہم لوگ بنا رہے ہیں اور ان کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں باقی جو پانی ہے ملاوٹ شدہ, اور اس سے کئی بیماریاں آ رہی ہیں, اور وہ بچوں سے لے کر بوڑھوں تک जो चाय के अंदर मिलावट आ रही है, जो मसाला जात के अंदर मिलावट आ रही थी, वो एक बहुत बड़ी स्टोरी है फूड अथॉरिटी की, कि इन्होंने इसको पैकिंग में लाकर मिलावट का जो है वो अपना जो चांस है वही खत्म कर दिया। पहले ये होता था कि हमें,
लेकिन बेहद शुक्रिया आप डॉक्टर अनवर, डॉक्टर अनवर हम चाह रहे हैं कि हम ये बताएं कि क्या असरात क्या होते हैं। वो तो उन्होंने बता दिया कि वो ये कुछ इकदाम कर रहे हैं और ये इकदाम ज़ाहिर अभी शुरू हुए हैं और पूरे पाकिस्तान में तो अभी बहुत कुछ करना अभी बाकी है। तो पेशतर इसके कि हम इनके इन इन कारकर्दगी को को हाईलाइट करें, हम लोगों को ये ज़रूर बताएं कि वो क्या करें और क्या ना करें कि उनकी जो सेहत है और उनकी सेहत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं अगर वो एहतियात ना करें और वो कुछ खाएं जो खाना चाहिए और वो कुछ ना खाएं जो उन्हें नहीं खाना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं
जी
हमारे साथ, अगर अगर आप हम मुझे इजाजत दें, अगर आप मुझे इजाजत दें जी बोलिए। मैं चाह रही थी कि आपने कुछ रोशनी तो डाल दी, लेकिन हमारे साथ इस वक्त ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रहीम यार खान के फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद फरहान जहांगीर चुगताई भी मौजूद हैं, उनको भी प्रोग्राम में शामिल कर लें और उनसे पूछते हैं कि हमारे जो खाने पीने की जो गलत आदत हैं उनका क्या रोल है गजाइत की कमी के फैक्टर को बढ़ाने में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद फरहान जहांगीर चुगताई साहब।
जी वालेकुम सलाम, जैसा तो बहुत शुक्रिया आपका और वॉइस ऑफ अमेरिका के, उन्होंने एक पंजाब की बहुत रिमोट एरिया रहीमिया खान से ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से हमें अपना डिसीशन का हिस्सा बनाया। और मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि जी हमारे जो रिस्पेक्टेबल पैनल है जो डिस्कशन कर रहे हैं उनकी बहुत अच्छी आ रही हैं, इसमें फूड अथॉरिटी का बहुत अच्छा रोल चल रहा है। और जो जहाँ तक सवाल है खाने पीने की आदत का हमारी गजाइत की कमी के ऊपर, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे आजकल जो है ऑर्गेनाइजेशन की वजह से डाइट एक्सक्लूसिव डाइट्स की जो है वो एक रिवायत कायम होती जा रही है। हमारे यहाँ पर जो है अब लोग जो है वो एक स्पेसिफिक डाइट पोर्शन वो यूज करना शुरू कर दिया उन्होंने, जिसकी वजह से उन्हें जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिल रहे। अब फॉर एग्जांपल किसी को अगर प्रोटीन रिच डाइट्स को ले रहे हैं तो बाकी जो प्रोटीन के जो हमारे डाइट के कंपोनेंट्स हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो रूल आउट हो जाते हैं, उनको प्रॉपर अमाउंट नहीं मिल रही होती। इसी तरह से हमारे जो होल व्हीट फ्लोर का जो एक सीना पसीना और हमें रिवायती तौर पर भी एक खुराक मिलती आ रही थी, लेकिन अब लोग होल व्हीट फ्लोर से वाइट फ्लोर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं जो अल्टीमेटली उनको बहुत सारी बीमारियों का वजह बन रही है। इसी तरह से हमारे जो फीमेल्स हैं, जो बच्चियाँ हैं, उनमें बहुत सारे जो हार्मोनल इश्यूज हैं वो डाइट के अंदर उनकी प्रॉपर गजाइत उनको ना मिलने की वजह से इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी कुछ बहुत सारे लोगों की हाइट डिस्टर्ब हो जाती है, कुछ ओवरवेट हो जाते हैं। अगर यही सिचुएशन जो है हम बड़ों में देखें तो लोग ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, लोग हाइपरटेंशन की तरफ जा रहे हैं, अल्टीमेटली जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज की तरफ जा रही है। तो ये कुछ ऐसे मामले हैं जिनकी वजह से जो है हमारे यहाँ पर डाइट के बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, डाइट जो है प्रॉपर नहीं मिल रही लोगों को। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो हमारे जो एक बड़ी ही रिवायती तौर पर है, कोई खुशी हो तो वहाँ पर आप मिठाइयों से लोगों को जो है ना उनको खुश करेंगे। अब वो इतनी ज़्यादा कैलोरीज रिच होती है कि वो रूटीन के तौर पर अगर आप देखें तो हमारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, कैलोरीज इनटेक बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी प्रिवेल कर रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर लोग उसको बर्न आउट नहीं कर पाते सीखते, जिसकी वजह से लोग ओबेसिटी ओवरवेट की तरफ जा रहे हैं जो अल्टीमेटली बहुत सारी मजीद बीमारियों को जन्म देती है। तो इसके हिसाब से ज़रूरी ये है कि आप हम डाइट और हमारा जो पोर्शन साइज है हमारे प्लेट का, उसमें हर तरह की फूड सब्जी हो, उसमें फ्रूट्स भी हो, उसमें कुछ वेजिटेबल का पोर्शन भी हो, उसमें पल्सेस का भी हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का भी हो, पानी की एक जो ज़रूरी जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो उन्हें सर्व की जाए, तो उससे एक तो खाना हमारा हर तरह की खुराक जो है वो उनकी डाइट का हिस्सा बन जाएगी और डाइट एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। अब एक नया ट्रेंड ये आ रहा है कि कस्टमाइज डाइट्स का, तो कस्टमाइज डाइट्स हैं जो जो पेशेंट्स हैं उनकी ओवरऑल जो बॉडी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक लोग बना के देते हैं। लोग जो खुद सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन के तौर पर चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो अल्टीमेटली होता ही है कि वो एक एक्सक्लूसिव डाइट की तरफ ऐसा ऐसा जाना शुरू कर देते हैं और कुछ ऐसे बाद वही चीज़ें उनको उनकी खुराक
तो फिर क्या होना चाहिए नहीं तो अब ये लोगों में सही खुराक खाने की अवेयरनेस को कैसे पैदा किया जाए, कौन पैदा करेगा लोगों को अगर नहीं पता तो उन्हें कौन गाइड करेगा?
جی بالکل. اس میں میں اس میں آپ کو بتاتے چلوں کہ پاکستان میں خاص طور پر, ویسے تو پوری دنیا میں یہ ایکٹیویٹی سیلیبریٹ کی جاتی ہے ورلڈ فوڈ ڈے کے حساب سے کل ہوئی, اور پورے پاکستان میں تمام اداروں میں جو اکیڈیمیا کی ہیں یونیورسٹی لیول پر جہاں جہاں فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور ہیومن نیوٹریشن.
لیکن کیا ایک دن کافی ہے؟ کیا صرف ایک ہی دن کافی ہے؟ کیا ایک ہی دن ہمیں یہ کرنا چاہیے؟ تو ایک
جی جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, ایک دن سے بالکل کام نہیں چلے گا, لیکن یہ قطرہ قطرہ سے سمندر بنتا, آہستہ آہستہ اس میں اویئرنیس پروگرامس کیے جاتے ہیں, لوگوں کو ٹریننگ سیشن دیے جاتے ہیں, انہیں بلایا جاتا ہے, ان سے الیکٹرانک میڈیا کے تھرو, پرنٹ میڈیا کے تھرو انہیں بروشرز دیے جاتے ہیں. بچوں کو جو بہت بڑی جو ہمارے فلیگ بیئر اور ٹارچ بیئر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. پہلے تو یہ ٹاپک کنسیڈر ہی نہیں ہوتا تھا فار ڈسکشن, اب یہ آہستہ آہستہ مین اسٹریم کے اوپر آ گیا, جس کی وجہ سے لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے اور لوگ اب اسی طرف واپس آ رہے ہیں. اسی طرح سے رینا خان نے, ہم نے کل ایک پروگرام کیا تھا ورلڈ فوڈ ڈے کے مناسبت سے, ایک سیمینار تھا, واک تھی, اور ہم نے ایک پروگرام لانچ کیا جس کو ہم نے نام دیا منو سلوا کا. منو سلوا الہامی کیونکہ کانسیپٹ ہے, اس میں ہم نے انہیں کانسیپٹ یہ دیا کہ جو آپ کے ہوٹلس میں اور جو آپ کے گھروں میں جو لیفٹ اوور فوڈ ہے اسے ضائع مت کیجیے, اس خوراک کو آپ کسی ایسے انپریویج تک دے دیں جن کے پاس وہ میسر نہیں ہے. ہمارا وہ تھوڑا سا کھانا کسی کے لیے بہت زیادہ ہو سکتا ہے. اس میں اگر ہم ہر کوئی اپنی سوشل ریسپانسبلٹی کو کنسیڈر کرتے ہوئے اپنا پارٹ پلے کرے, اس کو ایک اونرشپ دے, تو یقیناً ہم ایک خوراک کی کمی کو ایکول ڈسٹریبیوشن کے تھرو پورا کر سکتے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر محمد فرحان جہانگیر چغتائی, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ایک بریک کا وقت ہو گیا, تو ایک بریک کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
جی ضرور.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.urduvoa.com.
جی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کی راؤنڈ ٹیبل ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان میں غذائیت کی قلت, پاکستان میں غذا کی سیفٹی اور اس کے اثرات, اور ان سے نمٹنے کے کیا طریقے ہیں. اس کے لیے ہم نے غذائیت کے ماہرین کا ایک پینل آج کے پروگرام میں ہم نے مدعو کیا ہوا ہے. گفتگو کو ایک بار پھر آگے بڑھاتے ہوئے ہم پروفیسر ڈاکٹر طاہر ظہور کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں, جو اس وقت ورلڈ فوڈ پروگرام اسلام آباد کے ساتھ خوراک کے تحفظ سے متعلق ایک پروگرام سے بھی وابستہ ہیں. تو ڈاکٹر طاہر ظہور صاحب, کچھ بتائیے کہ عالمی ادارہ خوراک جو ہے پاکستان میں غذائیت کی قلت کو دور کرنے کے لیے کیا پروجیکٹس پاکستان کے ساتھ مل کے چلا رہا ہے یا انفرادی طور پر چلا رہا ہے, اور اب تک جو کچھ وہ کر چکا ہے اس کے کیا اثرات سامنے آئے ہیں؟ جی ڈاکٹر طاہر ظہور صاحب.
جی, اس میں اگر آپ مجھے اس سوال سے پہلے اجازت دیں تو تھوڑا سا فوڈ سیفٹی کے اوپر میں ایک بات کرنی چاہوں گا.
جی جی.
کہ جو فوڈ ان سیفٹی, آپ کو پتا ہے شاید کہ اس میں نا دو طریقے سے جو ہے نا فوڈ ان سیف ہوتی ہے, ایک تو ہے ٹاکسیسٹی پروڈکشن اس میں ہو جاتی ہے فوڈ میں, دوسرا ہے فوڈ بورن ڈیزیزز پیدا ہوتی ہیں. ایک ہے ان کی کمپوزیشن یا انگریڈینٹس جو ہے نا اگر اسٹینڈرڈ کے یا فوڈ گریڈ نہ ڈالے جائیں تو اس سے ٹاکسیسٹی بنتی ہے, دیٹ کین نو کاز ایون کارسینوجینک پرابلمس. ٹھیک ہے, جس میں آپ دیکھ لیں مٹھائیوں کی بات ڈاکٹر فرحان نے کی, تو اس میں جو ہے نا وہ کینسر کازنگ وہ فوڈ گریڈ اگر نہیں ہے تو وہ اس میں پرابلمس آتی ہیں, جو کہ اس وقت بہت انسیڈنٹ چل رہا ہے پاکستان میں. یہ بھی ریلیٹڈ فوڈ بورن ڈیزیزز, یہ جب تک ان کی صفائی ستھرائی اور ہائیجینک اینڈ سینیٹری کنڈیشنز ٹھیک نہیں ہوں گی اس سے بھی آئے گا, بیکاز آف سیورل پیتھوجینک مائکرو آرگنیزم. اسی ریفرنس سے میں نے ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ہم نے ایک پروجیکٹ, میں اپریشیٹ کرتا ہوں پنجاب فوڈ اتھارٹی کو, ان کے یہ میرے ٹیم ممبر ہیں اس میں, اور ہم نے یہ پورے پنجاب میں جو ہے نا ڈفرینٹ سٹیز میں سیمپلز ریڈی ٹو ایٹ کلیکٹ کیے. لیکن چونکہ یہ کام اتنا بڑا ہے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, ایبسولوٹلی جو پنجاب فوڈ اتھارٹی اپنا رول بہت اعلیٰ طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کولیبریٹو ورک, اس میں عوام کو اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے نا یکجا ہو کے چلنا پڑے گا. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو میں اسی آواز کے تھرو ریکویسٹ کروں گا کہ جتنی زیادہ سے زیادہ میڈیا کمپین ہو سکے اس میں کرنی چاہیے. آلریڈی ہمیں نظر آتا ہے جس شہر میں جاتے ہیں فوڈ سیفٹی والوں کا جو ہے نا وہ امپلیمنٹیشنز نظر آتی ہیں, لیکن پچھلے اتنے سالوں سے اگر نہیں کام ہوا تو آج سے 8-10 سال پہلے اگر شروع ہوا تو آئی تھنک اٹ ول ٹیک سم مور ٹائم.
ڈاکٹر طاہر صاحب, یہ
بیسٹ
ڈاکٹر طاہر صاحب, ایسا کیوں نہیں ہے کہ پاکستان میں جو نصاب کی کتابیں ہیں ان میں کیوں نہیں یہ خاص طور پر یہ شامل کیا جاتا کہ بچوں کو شروع سے ہی معلوم ہو کہ انہیں کیا غذا کھانی ہے, کون سی غذا اچھی ہے, کون سی غذا اچھی نہیں ہے؟ لیکن میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے نصابی کتابوں میں کچھ مخصوص جب سبجیکٹ ہیں ان میں تو وہ شامل کر دیتے ہیں, لیکن یہ لازمی ہونا چاہیے بچوں کو شروع سے ہی ان کو اپنی صحت کے بارے میں بتایا جانا چاہیے.
اور ان کو خوراک, اگر میرے خیال سے اگر کیپٹن عثمان صاحب ابھی موجود ہیں لائن پہ تو وہ بھی آپ کو شاید بتائیں گے کہ کچھ جو ہے نا وہ پانچویں کلاس تک جو ہے نا وہ میں بھی ان کے پینل میں شامل ہوں ایز اے سینئر سائنٹیفک پینل ممبر, اور ان کی اسٹیچری باڈی کا ممبر بھی ہوں ایز اے ڈائریکٹر جنرل آف نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس. ایک بک ہم نے وہ تیار بھی کروائی تھی اس وقت پینل میں. تو میرے خیال سے اب یہ چیزیں جو ہے نا وہ شروع ہو چکی ہیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ شروع نہیں ہے, یہ شروع ہو چکی ہیں, وہ زیادہ اچھے طریقے سے,
لیکن ان پر تیزی سے عمل درآمد ضروری ہے. ڈاکٹر عثمان, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ نے اس کتاب کو کس حد تک انٹروڈیوس کرا دیا ہے, اور کیا صرف پانچویں جماعت تک کی ضروری ہے یا باقی ہر سطح پر اس کو انٹروڈیوس کرایا جانا چاہیے؟ بلکہ باقاعدہ سیمینارز ہونے چاہیے اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں. آپ اس سلسلے میں کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا کچھ کر چکے ہیں؟
جی میں بتاتا ہوں جی آپ کو. آپ کو فیصل صاحب نے بتایا بھی ہے. ایکچولی جی یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے سائنٹیفک پینل کی محنت کی وجہ سے ممکن ہوا کہ پنجاب حکومت کو اپنے کریکولم کے اندر چوتھی پانچویں جماعت کے اندر نیوٹریشن اور فوڈ سیفٹی پہ چیپٹرز ایڈ کرنے پڑے. یہ بنیادی طور پر اس بات کی ریئلائزیشن تھی پنجاب میں کہ ہم نے فوڈ سیفٹی اور فوڈ نیوٹریشن کا سبق اپنے بچوں کو پڑھانا ہے, کیونکہ بچے ہمارے ٹارچ بیئرز ہیں.
ٹھیک ہے,
ہمارے پیغام کو.
تو آپ نے کتنے اسکولوں میں یہ جو چیپٹرز ہیں شروع ہو چکے ہیں؟
جی میں آپ کو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو ایک دو منٹ کے اندر تمام جو میئرز جو آپ بیسکلی آپ نے سوال کیے پچھلے دو تین منٹ سے آپ کر رہی ہیں کہ اویئرنیس کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے اور لوگوں کو کیسے بتایا جا رہا ہے کیا چیز صحیح اور کیا چیز غلط ہے. میں اس کے حوالے سے چاہتا ہوں آپ کو میں دو تین باتیں بتا دوں. ایک تو جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج الحمدللہ پاکستان کے اندر بالعموم اور پنجاب کے اندر بالخصوص ہمارے تمام یونیورسٹیز کے اندر آپ دیکھیں گے نیوٹریشن کو ایک امپورٹنٹ, نیوٹریشن کی فیکلٹی کو ایک امپورٹنٹ مقام حاصل ہے. آپ کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیے, آپ کسی بھی کالج میں چلے جائیے, آپ کو 450 بچہ وہاں پہ نیوٹریشن میں گریجویشن کرتا ہوا, ماسٹرز کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ آج اس کو امپورٹنٹ سوسائٹی میں مل چکی ہے. جب آج سے 20 پہلے ہم پڑھ رہے تھے تو ہمیں نیوٹریشن کے بارے میں اے بی سی بھی پتہ نہیں ہوتی تھی. آج آپ جائیں تو ایک اوور آل اویئرنیس سوسائٹی میں آئی ہے, جس کا کریڈٹ ہمارے میڈیا کو جاتا ہے, جس کا کریڈٹ ہماری تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو جاتا ہے جنہوں نے اس ٹاپک کو ہمارے لیے امپورٹنٹ بنایا.
ٹھیک,
اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے پنجاب کے اندر تمام یونیورسٹیز کے ساتھ ایم او یو سائن کیا ہوا ہے. ہم ہر مہینے کسی نہ کسی یونیورسٹی میں جا کر پروگرام کرتے ہیں, اس پروگرام کی وساطت سے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کیا کام کر رہی ہے اور لوگوں کو اپنا امبیسڈر بناتے ہیں. ہم نے اسکول ایجوکیشن کے ساتھ مل کے ایک ابھی جو اپنا نیا پروگرام بنایا ہے وہ یہ ہے, جس میں ہم اسکول کے بچوں کو اپنے امبیسڈرز بنائیں گے اور ان بچوں کو ہم فوڈ امبیسڈرز کا نام دیں گے, جو اپنے گلی محلوں میں جا کے نشاندہی کریں گے کہ کہاں پر پاپڑ بناتے وقت رنگ کا استعمال ہو رہا ہے یا کیمیکل گریڈ کلر کا استعمال ہو رہا ہے, کہاں پہ لوگ گدا آئل یوز کر رہے ہیں, یا کہاں پہ اینیمل فیٹ سے چربی کو پگھلا کر تیل بنایا جا رہا ہے, یا کہاں پر جو ہے وہ اوور یوز کوکنگ آئل جو ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے.
تو بچے کس طرح شامل, بچے نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے یا اسٹوڈینٹس کیسے اس کا پتہ لگائیں گے؟
آج پنجاب فوڈ اتھارٹی پورے پنجاب میں پھیل چکی ہے, ہمارا آپریٹر ہر جگہ پر موجود ہے, ہمیں وسل بلورز کی تلاش ہے. جو دیکھیں جب کسی کو میں بتاتا ہوں کہ میں ایسے لوگوں کو پکڑ رہا ہوں تو لوگ مجھے انفارمیشن دیتے ہیں آٹومیٹکلی. آج سے پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ ان چیزوں کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے, اور الحمدللہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے معاشرے میں وہ کانفیڈنس لوگوں کو دیا ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی ایڈلٹریشن کی شکایت کرتے ہیں تو وہ ان نوٹس نہیں جاتی ہے, اور
سزا کیا ہے
اور کریکٹیو ویئرز لیے جاتے ہیں.
تو عثمان یونس صاحب, کیا سزا, کیا قانون میں کیا سزائیں ہیں ایسے لوگوں کی جو کہ ملاوٹ کرتے ہیں اور غیر معیاری چیزیں بیچتے ہیں, اور وہ کس کو ملتی ہے؟ کیا خوراک بیچنے والے کو ملتی ہے, خوراک پیدا بنانے والے کو ملتی ہے, یا خوراک کی سپلائی کرنے والوں کو ملتی ہے؟ کس کو سزا ملتی ہے؟ اور
جی میں ایک بات ہمارے قانون میں جو قانون بنا, اس قانون کے اندر یہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ ان سیف فوڈ کا کاروبار کرنے والا شخص کسی بھی سٹیج پہ ہو, हाँ वो उगाने की स्टेज पे हो, अगर वो खेत में सब्जी गंदे पानी से उगा रहा है तो वो कसूरवार है, हाँ वो ट्रांसपोर्टेशन की स्टेज पे हो तो वो कसूरवार है, हाँ वो स्टोरेज की स्टेज पे हो तो वो कसूरवार है, हाँ वो प्रोसेसिंग की स्टेज पे हो तो वो कसूरवार है, हाँ वो बेचने की,
लेकिन लेकिन उसको पकड़ने की, उसको पकड़ने के लिए क्या इकदाम आप कर सकते हैं, और अब तक आप कितने लोगों को पकड़ चुके हैं और सजा भी दिलवा चुके हैं अभी तक? जी जी,
पहली बात तो ये है कि हमारे तमाम जो फूड हैं उनके हमने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, उन स्टैंडर्ड्स को चेक करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट मौजूद है, हमारे पास ऐसी ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है कि हम उनकी प्रोडक्ट को अपने लैब्स में लाके टेस्ट करते हैं और अपने स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट अगर वो उन टेस्ट को क्वालिफाई ना करें तो उनको प्रोसीड किया जाता है उनके खिलाफ, और छोटे जो बिजनेसेस हैं उनको 5 साल तक की सजा हो सकती है, और जो बड़े बिजनेसेस हैं जो बड़ी मिलावट में मुलव्वस है जिनका नुकसान ज्यादा लोगों को हो सकता है उनको 10 साल तक की सजा हो सकती है।
तो अब तक क्या क्या
पूरे एक साल के अंदर मुझे अगर आप कहेंगे
जी इरशाद,
देखिए जी हमारे पास मल्टी टीयर है जिसके ऊपर हम लोगों को करेक्ट करते हैं। सबसे पहली जो स्टेज है वो हम उसको कहते हैं इम्प्रूवमेंट नोटिस, यानी कि जब हम आपके पास जाते हैं और हम देखते हैं कि आप कोई फूड बिजनेस कर रहे हैं तो हम सबसे पहले आपको एक इम्प्रूवमेंट नोटिस देते हैं, वो बुनियादी तौर पर उन पॉइंट्स को कवर करता है जिसमें आपकी पर्सनल हाइजीन, किस माहौल के अंदर आप क्या बिजनेस कर रहे हैं, खाना
नहीं, ये तो हो गया ना, ये तो सारे बिल्कुल
आपका प्रोडक्शन
नहीं। डॉक्टर साहब
अगर आप मुझे एक दो मिनट के लिए ये बात बताने में दें तो आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ।
जी,
मल्टी लेयर्ड अप्रोच है हमारी, सबसे पहले हम इम्प्रूवमेंट नोटिस देते हैं, उसके बाद अगर कोई करेक्टिव मेजर ना ले तो फिर हम उसको फाइन करते हैं, अगर वो भी करेक्टिव मेजर ना ले तो फिर हम उसको सील करते हैं, और अगर फिर भी वो दुरुस्त ना हो तो फिर हम उसको FIR करके बंद करते हैं। साइमल्टेनियसली भी कुछ एक्शन हो रहे होते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि किसी शख्स को हमने पहली दफा ही पकड़ा और उसको FIR कर दी क्योंकि वो पहली दफा ही ऐसे ऑफेंस में मुलव्वस था जो इंसानी जान के लिए नुकसानदेह था, यानी कि वो ऐसी मिलावट कर रहा था जिससे किसी की जान जा सकती।
तो इसके अदाद व शुमार को आप बताएंगे, मेरा कहने का मतलब
जी, मैं आ रहा था जी अदाद व शुमार ऐसे हैं जी कि हमने इस पूरे पिछले एक साल के अंदर तकरीबन 650 मिलियन रुपीज का फाइन किया है मुख्तलिफ फूड बिजनेसेस को मुख्तलिफ किस्म की वायलेशन के अंदर। अगर आप अरेस्ट के बारे में बात कर रही हैं तो ओवर 700 लोगों को मुख्तलिफ किस्म की एडल्ट्रेशन के अंदर अरेस्ट किया गया है। अगर आप FIR की बात करेंगी तो FIR की तादाद जो है वो हजारों में है जिन लोगों को हमने मुख्तलिफ किस्म की वायलेशन में FIR करके जो है उनके खिलाफ मुकदमा जो है वो मुख्तलिफ अदालतों में चला रहे हैं। तो और अगर आप सीलिंग की बात करेंगे तो थाउजेंड्स ऑफ प्रीमिसेस हैव बीन सील्ड, thousands of premises have been put under emergency prohibition order, corrective measures liye jaate hain, agar koi khule mein khana bana raha hai aur wahan pe makhi aa rahi hai ya machhar aa raha hai to usko tab tak ke liye band kiya jata hai jab tak wo wahan jali na laga le ya usko cover na kar le, agar kisi ne washroom jo hai apne production area mein rakha hua hai to usko band kiya jata hai temporarily taki wo apna washroom jo hai wo production area se shift kare, agar kisi ne storage zameen pe rakhi hui hai to uski storage ko zameen ki nami se door karne ke liye usko हवादार जगह पर स्टोरेज करने के लिए बताया जाता है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है जिसके तहत हम
आप आगे चल रहे हैं,
इसको इम्प्रूव कर रहे हैं, ग्रेजुअली उनको आगे लेके चल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मकसद नहीं है हमारा कि हम फूड बिजनेस को बंद कर दें, हमारी जो एफर्ट है वो ये है कि हम सेफ्टी पैराडाइम के अंदर रहते हुए उनको इम्प्रूव करें, उनकी क्वालिटी को बेहतर बनाएं, और अगर आज वो थोड़े बेहतर हुए हैं तो कल वो ज्यादा बेहतर हो जाए। मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा, आज पंजाब के अंदर तमाम फूड बिजनेसेस जो है वो बेसिक पैथोलॉजी के टेस्ट के बाद अपने लोगों को अपने पास इंप्लॉय कर सकते हैं। आज ये मुमकिन नहीं है कि किसी शख्स को टाइफाइड हो या वो किसी ऐसी बीमारी में मुलव्वस हो जो कि वो किसी दूसरे शख्स को फैला सकता है खाना पकाने के थ्रू, वो उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो फूड बिजनेस में काम करे क्योंकि हमने उनकी जो पैथोलॉजी के टेस्ट है वो कंपल्सरी किए हुए हैं। इसके साथ साथ फूड बिजनेस की लेवल वन की ट्रेनिंग भी कंपलसरी है पंजाब में, और हम तकरीबन 25,000 से ज्यादा लोगों को लेवल वन और 15,000 से ज्यादा लोगों को लेवल टू की ट्रेनिंग करा चुके हैं पिछले एक साल में, और इस वक्त पूरे पंजाब में तकरीबन 17,000 से ज्यादा लोग जो है वो फूड बिजनेस में लेवल वन और लेवल टू की ट्रेनिंग करके काम कर रहे हैं। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, आपको पता है कि फूड बिजनेसेस रोजाना इंक्रीज होते हैं, हम रोजाना ये ट्रेनिंग का अमल जो है इसको जारी रखे हुए हैं। साथ साथ जो हमारी मेडिकल स्क्रीनिंग है वो भी कंपलसरी है पंजाब के अंदर, वो भी हम साथ साथ करते हैं जी।
एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ, वो आपकी इन बातों पर कोई कुछ आपसे सवाल करना चाहते हैं जी। कौन सा हमारे साथ है?
जी मोहसिन अली मौजूद हूँ।
जी मोहसिन अली कहाँ से, जल्दी से सवाल कीजिए।
डी जी खान
जी बोलिए।
हाँ मेरा इस मोहतरम से आपका बहुत शुक्रिया आपने कॉल हमारे लिए। मेरा ये क्वेश्चन है मोहतरम से, जो कह रहे हैं कोई भी हाल नहीं है, फूड वाले आते हैं बस لوگوں سے رشوت لیتے ہیں, کوئی حشر نہیں ہے ان کا, جو ان کو پیسے دے رہے ہیں ان کے خلاف کوئی جو ہے نا کاروائی بھی نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا. اور ویسے بھی جو شاپس ہیں ان کے خلاف آتے ہیں, جو مینوفیکچرنگ فیکٹریز ہیں جو بناتی ہیں ان کے خلاف تو کوئی بھی ایکشن نہیں ہوتا. جو بیس ہے جب تک اس کو ختم نہیں کریں گے, جو دو نمبر اشیاء بنا رہے ہیں غلط ان ملاوٹ شدہ, تو پھر جو ہے نا جب ان کی وہ نہیں ہوگی, ختم نہیں ہوگی, ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی, پھر تو وہ بکیں گی. کوئی حال نہیں ہے پاکستان میں, ساری کرپشن ہی کرپشن ہے.
عثمان یونس صاحب آپ نے بہت وضاحت کی, یہ ڈی جی خان سے انہوں نے بات کی,
باقی کوئی قانون بھی نہیں ہے.
ڈی جی خان کی بات کر رہے ہیں, ڈی جی خان سے.
ہیلو
جی, ڈیرہ غازی خان سے.
جی میں چاہوں گا کہ آپ کائنڈلی اپنے اسی پروگرام میں ہمیں بتائیے اس شخص کا نام جس نے رشوت مانگی ہے. میں آپ کو آج اگلے 10 منٹ کے اندر انکوائری کر کے اس کے خلاف ایکشن لے کے دکھاؤں گا. الحمدللہ آج اگر پنجاب فوڈ اتھارٹی پہ کوئی الزام نہیں لگتا تو وہ کرپشن کا الزام ہے جو ہمارے اوپر نہیں لگتا.
تو
ہم
اپنے پروڈیوسر سے گزارش کریں گے کہ ان
کا نام بتائیے. ہم آپ کو انسپیکشن اس کے خلاف جو ہم نے انسپیکشن کی ہے یا کب ہم نے کب اس کی انسپیکشن کی ہے وہ بھی اس کی ڈیٹیل.
تو بہت اچھی ہے, آپ نے بڑا اچھا یہ ایک آفر کی ہے. ہم اپنے پروڈیوسر سے کہیں گے ان کا, آپ ان کا نمبر نوٹ کر لیجیے. ایک اور کالر ہے وہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہم پہلے بتا دیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر سیف رحمان بھی موجود ہیں, اور ڈاکٹر سیف رحمان سے بھی ذرا تھوڑا سا اور انتظار کر لیجیے. ایک کالر کو ہم لے لیتے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی کہاں سے بول رہے ہیں جلدی
سے؟ یہ ہے کہ میں راول پنڈی سے بول رہا ہوں.
جی
بڑی اچھی سی باتیں ہو رہی ہیں, باتیں سن کر پتہ چلتا ہے کہ کوئی بیماری نہیں رہے گی, کوئی بے منی نہیں ہوگی. لیکن جتنے مسالوں کی دکانیں کھلی, مسالہ جات کی, یہ جا کے چیک کریں, ہر مسالہ دو نمبر مل رہا ہے, آپ کی دو نمبر مل رہی ہے.
جی ڈاکٹر عثمان یونس صاحب, یہ راول پنڈی سے ان کی شکایت ہے, آپ نوٹ کر لیجئے اس کو بھی.
اور مجھے سمجھ نہیں آئی کس چیز کی بات کر رہے ہیں.
انہوں نے بھی مسالوں کی بات کی ہے کہ مسالے دو نمبر آ رہے ہیں اور جو دوسری چیزیں ہیں انہوں ملاوٹ ہے. تو یہ آپ نے,
میں بتاتا ہوں جی, ہم سال میں دو دفعہ مسالوں کی جو سیمپلنگ ہے وہ کرتے ہیں. پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ویب سائٹ ہے, وہاں پہ جائیے, وہاں پہ جو مسالے جن کے برانڈ ہم نے فیل کیے ہیں ان کے نام بھی موجود ہیں, اور جن کے برانڈ ہم نے چیک کر کے جو ہمارے.
اچھا تو یہ ڈاکٹر صاحب, یہ عثمان صاحب, یہ تو اب ہاں تو برانڈ کی بات تو بعد میں, یہ تو عام لوگ جو دکانوں پر عام لوگ خرید رہے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر یہ چیزیں میسر نہیں ہیں.
مسالوں کی بات کرو, آج پنجاب میں ان برانڈیڈ چیز نہیں بک رہی, ہم نے مسالے چونکہ پیکج کر دیے ہیں, پیک کر دیے ہیں, اس لیے ہر برانڈ کا نام اس مسالے پر موجود ہے. آپ برائے مہربانی ہماری ویب سائٹ پہ جائیے.
ویب سائٹ پر کیا جائیں, وہ تو یہ صاحب تو خود وہیں موجود ہیں راول پنڈی میں, وہ اپنے ان دکانوں کا بتا رہے ہیں جہاں سے وہ اشیاء خرید رہے ہیں, تو انہوں نے اس کی بات کی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آپ اس پر کام کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. اور اس کا مطلب یہ کہ آپ کو بھی مزید کام کرنا باقی ہے, آپ کو اور بھی بہت سارا کام کرنا ہے تاکہ ہر دکان سے غیر معیاری چیز ہٹ جائے, تاکہ لوگ غیر معیاری چیزیں خرید کر بیمار نہ ہوں. میں ڈاکٹر سیف رحمان کو ضرور اپنے پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گی. السلام علیکم ڈاکٹر سیف رحمان صاحب. جی خوراک کی بات ہو تو خوراک موجود ہے پاکستان میں, لیکن وہ ضائع کرنے میں پاکستان جو ہے خوراک, خاص طور پر پھلوں کو ضائع کرنے میں نمبر ایک پر ہے, جبکہ پھل, معیاری پھل پیدا کرنے میں آپ نے پروگرام سے پہلے بتایا تھا کہ نمبر پانچواں نمبر ہے شاید. تو یہ بتائیے کہ یہ جو پھل ضائع ہو رہے ہیں پاکستان میں, ان کو کیسے ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے, اور یہ جو پھل ہیں جب یہ ضائع ہو جائیں تو ان سے ماحول پر کیا برے اثرات مرتب ہوتے ہیں, جلدی سے. اور پھر ہم ان سے پوچھیں گے عثمان یونس صاحب سے کہ کیا وہ پھلوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہیں. جی
جی بہت شکریہ. پھلوں کو بچانے کے لیے سب سے پہلے تو جو ہماری چین ہے کولڈ اسٹوریج کی, اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. پوسٹ ہارویسٹ ٹیکنالوجی جو ہے اس کو ہم امپروو کر سکتے ہیں.
نہیں لیکن وہ پھل تو
ماحول سے
نہیں, پہلا سوال یہ ہے کہ وہ پھل جو مارکیٹ تک ہی نہیں پہنچ پاتا, وہ پھل وہیں گر کے تباہ ہو جاتا ہے, اور کیونکہ وہ کہیں جا نہیں سکتا, وہاں ٹرانسپورٹ میسر نہیں ہے, تو اس کو ضائع ہونے سے پہلے تو بچایا جائے نا. وہ کیسے بچائیں گے اور کون بچائے گا اس کو؟
اس کے لیے تو جو ہمارے ایگریکلچر فارمرز ہیں, ہمیں ان کو جو ہے وہ ٹرین کرنا ہے, تاکہ جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں کیا وہ ان سے واقف ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے زیادہ تر فارمرز ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو ان کی اویئرنیس اور ان کی ایجوکیشن کے لیے ہماری یونیورسٹی جو ہیں وہ کافی اچھا کردار ادا کر سکتی ہیں, کہ انہیں ٹائم ٹو ٹائم یہ بتا سکیں کہ किन टेक्नोलॉजीज के थ्रू जो है वो ये सारा काम वो कर सकते हैं।
ठीक, लेकिन जाहिर
आपने बात की थी कि जो फल जाया हो जाते हैं और उनके माहौल के क्या असरात होते हैं, तो अगर आप हमारी जो सब्जी मार्केट्स हैं उनका जायजा लें तो जो गले सड़े फल और सब्जियां होती हैं वो आप देखें कि वो कहीं फेंक दी जाती हैं, और उन्हीं मार्केट्स के अंदर जो है वो सीवेज का पानी, गंदा पानी भी मिक्स हो रहा होता है, तो वहां पे एक नई किस्म की माइक्रोबियल डाइवर्सिटी जो है वो पैदा हो रही है। अब आपका जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है उसके अंदर पैथोजन है, और जो आपका फ्रूट और वेजिटेबल वेस्ट है उसके अंदर फूड बॉर्न डिजीजेज के पैथोजन भी मौजूद हैं। तो ये मुमकिन है कि वहां पे एक नई किस्म के पैथोजन या नई किस्म की जो डिजीजेज हैं वो पैदा हो सकती है।
ठीक,
अगर आपको याद हो तो पिछले साल शखर के इलाका में एक नई किस्म का टाइफाइड आया है जो कि इंतहाई ड्रग रेजिस्टेंट है, तो वो भी किसी ऐसे ही एक्शन की बदौलत जो है वो प्रोड्यूस हुआ है जिसको आज तक हम सॉल्व नहीं कर पाए।
ठीक है,
दूसरा तो इसका हल ये है कि हम
दूसरा हल ये है
कि हम उस उन जो फ्रूट और वेजिटेबल वेस्ट है उसको क्विकली जो है वो रिमूव कर दें, और जो हमारे फार्मर्स हैं वो एनारोबिक डाइजेशन के थ्रू उससे ना सिर्फ बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं बल्कि वो बहुत अच्छी एक बायो फर्टिलाइजर है, और वो बायो फर्टिलाइजर जो है दैट कैन बी अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट टू इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जिससे जो हम अपना माहौल है उसको बचा सकते हैं, और जो एक नया कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक फूड का उसको हम इंश्योर कर सकते हैं।
ठीक है, ठीक है, तो ये बात हुई कि एक तो फलों को जाया होने से बचाने की जरूरत है, और उस्मान यूनुस साहब आपका इसमें कोई रोल है फूड अथॉरिटी का कि वो फलों को पहुंचा दे, महकमा ज़रात तो पता नहीं करेगा या नहीं करेगा या कर रहा है या नहीं कर रहा।
बुनियादी जी, पंजाब फूड अथॉरिटी जब हम किसी भी कोल्ड स्टोर में विजिट करते हैं तो हम वहाँ पे लोगों को जरूर एजुकेट करते हैं कि उन्होंने फलों को किस तरह से स्टोर करना है और वो क्या ऐसी गुड प्रैक्टिसेस हैं जिनको फॉलो करके वो ये इंश्योर कर सकते हैं कि उनका जो फल है वो खराब ना हो, या वो खराब अगर हो गया है तो वो दूसरे फल को भी खराब ना करे। तो सेग्रीगेशन के लिए, कोल्ड स्टोर के अंदर चीजों को स्टैक करने के लिए, किस टेम्परेचर पे चीजों को स्टोर करना है, ये हम यूजुअली लोगों को एजुकेट करते हैं ना सिर्फ थ्रू विजिट्स बल्कि हमने इसके हवाले से उनको मुख्तलिफ सेमिनार्स करा के भी मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर एजुकेशन कराई है। मंडी के लोगों को भी हम बुलाते हैं, कोल्ड स्टोर के लोगों को भी बुलाते हैं, जो परचून के काम में लोग मुलविस हैं उनको भी बुलाते हैं, और उनके बिजनेसेस को सेफ रखने के लिए उनको मुख्तलिफ किस्म की हिदायत जो है वो हमने प्रिंट की शक्ल में भी उनको मुहैया की हुई है। हमारी SOPs जो है वो डाउनलोड करके इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने दुकानों पर और अपनी मुख्तलिफ स्टोरेज फैसिलिटीज के ऊपर, और हम उनको फ्रॉम टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट करके उन चीज़ों को फिर
कर भी सकते हैं। तो उस्मान यूनुस साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहिए, आज तो आपने आप पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हम चाहेंगे कि डॉक्टर ताहिर जहूर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे इस वक्त उस्मान यूनुस साहब से।
बिल्कुल जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। रियली मैं तो समझता हूँ कि ये सेशन जो है ना वो आपको कंटिन्यू करने चाहिए, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि वक्तन सामने आती रहती हैं। मैं अपने पिछले सवाल की तरफ वापस आऊंगा, रोल ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन पाकिस्तान।
जी,
तो उस सिलसिले में मैं ये थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चूंकि पूरी दुनिया में उनके डिफरेंट कंट्रीज में उनके रोल्स हैं, पाकिस्तान में पाकिस्तान के इश्यूज के मुताबिक उनके रोल्स हैं, जिसमें इन कोऑर्डिनेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विद जेनरस इंटरनेशनल डोनर्स दे ऑलवेज सपोर्ट कि वो जो है ना वो लोकली स्पेशलाइज न्यूट्रिशियस फूड को जो है ना वो डेवलप करते हैं और उसको न्यूट्रिशनल डाइट को इम्प्रूव करके लोगों को मुहैया करते हैं, और उसमें ज्यादातर ये फिर इनके एक्शंस होते हैं, दे इंटरवीन करते हैं टू ट्रीट एक्यूट माल न्यूट्रिशन, जैसे कि सिंध और बलोचिस्तान के एरियाज जो है ना मॉडल स्टडीज हैं इनके, ये प्रिवेंट कर रहे हैं स्टंटिंग में स्टडी कर रहे हैं अंडर 5 ईयर ऑफ एज चिल्ड्रन, और उसके अलावा नेशनल और प्रोविंशियल फोर्टिफिकेशन अलायंस के साथ जो है ना ये राइस और चक्की वीट फ्लोर फोर्टिफिकेशन के एजेंडा पे काम कर रहे हैं। वीट फ्लोर फोर्टिफिकेशन एक ऐसा है जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये फूड स्टेबिलिटी जो है ना उसमें वीट की जो है ना ये एक स्टेपल फूड है, और ये 70% लोग जो है ना वो 60-70% देहातों के लोग जो है ना वो चक्कियों का आटा खाते हैं, मिलों का आटा भी अलग से है, लेकिन 100% ये स्टेपल फूड, हर बंदा एक चपाती रोटी तो जरूर खाता है। तो उसको जो है ना वो न्यूट्रिशन जो हिडन हंगर है उसमें आयरन की फोर्टिफिकेशन, जिंक, विटामिन B12 इसकी फोर्टिफिकेशन पे आजकल मॉडल स्टडी हो रही है जो कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और अल्लाह करे कि ये इसमें मुकम्मल कामयाब हो जाए हम मॉडल बनाने में, तो ये इसकी जो है ना वो एनीमिया की जो 60% औरतें और बच्चे और यंग एडल्ट गर्ल्स जो है ना ये इनमें एनीमिया की ज्यादा प्रॉब्लम है। ये जिस तरह से एक साल्ट आयोडाइज का मॉडल था इसी तरह से जो है ना ये इसका वीट फोर्टिफिकेशन का मॉडल कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह। हम बड़ा पूरी उम्मीद है इस चीज में जिस लगन से हम काम कर रहे हैं यहाँ पे मिलके उनके साथ एक्सपेक्ट के जो है ना इंशाल्लाह ये पूरे पाकिस्तान को जो है ना ये बड़ा बेनिफिट देगा विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिशन और गसाइयत के हवाले।
बेहद शुक्रिया डॉक्टर तायजुर साहब।
डॉक्टर
हमारे पास अब सिर्फ 5 मिनट बाकी है और हम चाहेंगे बाकी लोगों से भी एक एक सवाल जरूर कर लें। डॉक्टर फरहान जहांगीर चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि वो मसला मैं जरूर चाहूंगी कि आप उसको हाईलाइट कीजिए कि जब जो खुराक है या जो फसल पैदा हो गई एक जगह या फल पैदा हो गए उनको मार्केट तक पहुंचाने के लिए जो उसी हालत में ताज़ा फ्रेश हालत में पहुंचाने के लिए क्या होना चाहिए और क्या ये जो ऑनलाइन अब मार्केट्स वजूद में आ रही हैं उनका कोई रोल हो सकता है और क्या ऐसी ऑनलाइन मार्केट्स को प्रमोट करने में यूनिवर्सिटियां कोई किरदार अदा कर सकती हैं जो
बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन आपके सिलसिले में। उसमें ये है कि हमारे यहाँ पे अभी तक कोल्ड चेन और सप्लाई चेन का जो है बहुत बड़ा एक इशू है क्योंकि तो काफी ज्यादा कॉस्ट इस पे आती है जिसकी जो इतनी इजीली हम उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि कोल्ड चेन कुछ छोटे लेवल पे अगर हम इंट्रोड्यूस करवाया जाए उसमें कुछ इंजीनियरिंग स्पेसिफिक ना से आ जाए कुछ स्मॉल स्केल लेवल पे हम जो फार्म फ्रेश फ्रूट्स हैं उनको हम लोकल मार्केट्स बनाए जाए उनको बड़ी मार्केट में लेके आए उनको छोटी छोटी मार्केट मुख्तलिफ जगह बना दिए ताकि हर एक एक्सेस उसके फ्रेश फ्रूट की एट द डोरस्टेप रादर देन कि हम उन्हें बहुत दूर दूर तक भेजें क्योंकि उसमें कॉस्ट का बहुत ज्यादा इंप्लीकेशन आ जाती है उसकी यहाँ पे स्टोरेज शेल्फ स्टोरेज है उसकी इफेक्ट हो जाती है। यूनिवर्सिटी इस तरह से कर सकती है कि यूनिवर्सिटीज अपनी जहाँ पर जो एग्रीकल्चर हमारी यूनिवर्सिटीज हैं वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है उसमें नई नई वराइटीज इंट्रोड्यूस करवा के उनकी नई नई प्रिजर्वेशन टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करवा के जैसे हम अगर वैल्यूडेशन की तरफ जाएं तो हमारे पास मल्टीपल वेज हैं कि हम हमारी फ्रेश प्रोड्यूसर्स को अच्छे वे से वैल्यूडेड प्रोडक्ट करके अच्छा रेवेन्यू भी अर्न कर सकते हैं और उन्हें मार्केटेबिलिटी और शेल्फ लाइफ एक्सटेंशन की तरफ भी लेके जा सकते हैं।
जी तो डॉक्टर अनवर मलिक साहब आप क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में जो गजाइयत की कमी का मसला है इसके लिए आप क्या तजावीज देंगे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं?
मैं डॉक्टर फरहान और डॉक्टर सैफ की बात को थोड़ा सा बनाऊंगा। देखिए पाकिस्तान के अंदर जितना फ्रूट जाया हो रहा है उसकी आप अगर मिकदार पूछेंगे 2.2 टन वेजिटेबल्स और 3 मिलियन टन जो है वो फ्रूट हमारा वेस्ट हो रहा है और ये ऑलमोस्ट 30% ऑफ द टोटल ऑफ पाकिस्तान
जी
वैल्यू एडिशन।
तो इसके लिए क्या आपके तजवीज क्या देंगे
प्रोडक्ट बना के?
जी तजवीज दीजिए।
सॉरी
तजवीज क्या देंगे आप इनको बचाने के लिए?
जी उसके लिए ये है कि मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी अभी बताता हूँ।
एक मिनट है आपके पास सिर्फ।
बल्तिस्तान में जाके यहाँ पे जाया हो रहा था फ्रूट मैंने उनको जाके तरबियत दी है कि इसके जैम यानी इसकी अच्छी पैकिंग इसकी हाइजेनिक जो है ये प्रोसेसिंग ये हो सकती है और प्राइस भी ज्यादा मिल सकती है बीच में जो ट्रेडर है ये ज्यादा पैसे जमाते हैं उसको भी जो है साइड पे किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट थोड़ा सा एम्पावर करे इसको और इसकी वैल्यू एडिशन फर्दर की जाए और R&D एक्टिविटीज बढ़ाई जाए तो हम ये मैल न्यूट्रिशन भी दूर कर सकते हैं और अपने फार्मर की जो है वो जो है उसकी उसको भी ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी मिकदार है 30% फ्रूट का जाया होना
और वही फ्रूट हाँ और वही फ्रूट अगर ताज़ा हालत में जी और एक तो जाया ना और दूसरे ताज़ा हालत में जब लोगों को पहुंचे तो उनकी जो गजाइयत की कमी का मसला है उसमें बड़ी सप्लीमेंट मिल जाएगा अगर उनको सस्ता फल मिल जाएगा और वो ताज़ा भी होगा और गजाइयत से भरपूर भी होगा तो एक गजाइयत की कमी के मसले की सूरत निकल सकेगी। तो उस्मान समाप्त कीजिए कि आइंदा हुकूमत क्या करने का इरादा रखती है इस मसले को निपटने के लिए आपके पास सिर्फ एक मिनट है।
जी मैं 30 सेकंड बताऊं जी आपको कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर बिलुम और पंजाब के अंदर बिलखसूस लोगों की अवेयरनेस की वजह से और मीडिया के ताबून की वजह से और इवन जुडिशरी के ताबून की वजह से फूड सेफ्टी अब एक अहम सब्जेक्ट है और हम
बेहद शुक्रिया
अब इस बात की रियलाइजेशन जो है वो कर चुके हैं
जी
हमने
बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को समेटने का वक्त हुआ बहुत शुक्रिया हमारे आज की हमने बात की पाकिस्तान खुराक की सेफ्टी और गजाइयत की किल्लत की सूरत हाल और उसे निमटने के तरीकों पर हमारे साथ थे पाकिस्तान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ताहिर जहूर हमारे साथ थे, डॉक्टर मोहम्मद फरहान जहांगीर चुगताई हमारे साथ थे, प्रोफेसर डॉक्टर अनवार मलिक हमारे साथ थे, डॉक्टर एम सैफ रहमान और हमारे साथ डॉक्टर अनीस कुरैशी मौजूद नहीं थे, उनसे हमारा रब्ता नहीं हो सका, हमारे प्रोड्यूसर थे अंजुम हैर गिल। यास्मीन जमील को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
प्रोग्राम आपने सुना राउंड टेबल, ये प्रोग्राम नशे मुकर्रर के तौर पर पेश किया गया।
पाकिस्तानी स्कूलों में ई लर्निंग सिस्टम, खुसूसी रिपोर्ट के साथ मैं हूँ यास्मीन जमील। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में ई लर्निंग सिस्टम काफी अरसे से जारी है, लेकिन ये पहली बार स्कूलों की सतह पर भी मुतारिफ कराया जा रहा है। 3 साल कबल बलूचिस्तान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम करने वाले एक इदारे तालीम फाउंडेशन ने अपने एक देही स्कूल में सबसे पहले ये निज़ाम मुतारिफ कराया था। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए तालीम फाउंडेशन के फाउंडर और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन डॉक्टर जफर कादिर ने अपने ई लर्निंग लैब के मॉडल के बारे में तफसीलात फराहम की।
इंटरेक्टिव लर्निंग सॉल्यूशन, बच्चे को एक किताब की रीडिंग की बजाय हम बच्चे को वो लेसन विजुअली दिखा देते हैं। क्लास में इंटरेक्टिव लैब हम एस्टेब्लिश करते हैं, उस लैब में एक इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड होता है, व्हिच इज लाइक एंड्रॉइड स्क्रीन होती है, बहुत बड़ी, कोई तकरीबन 80 इंच साइज की एंड्रॉइड स्क्रीन होती है, बड़ी वाली जो टच स्क्रीन जिसको कहते हैं। उसके साथ प्रोजेक्टर होता है और साथ ही एक कंप्यूटर होता है, साथ छोटा सिस्टम जिसमें कंटेंट फीड करते हैं, कंटेंट हम प्रोजेक्टर के जरिए थ्रो करते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर। व्हाइट बोर्ड चूंकि इंटरेक्टिव है और टच स्क्रीन के साथ बच्चा उसको खेलता है, स्टोर करता है पूरे कंटेंट को, बच्चा चूंकि खुद इन्वॉल्व होकर खेल रहा होता है और खेलने खेलने बच्चा सीख रहा होता है। जिसमें बच्चे वीडियो ये गेम्स खेलते हैं टेलीफोन के ऊपर बैठ के, मोबाइल फोन के ऊपर, उसी तरह मोबाइल फोन की बड़ी 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 शक्ल है 80 इंच में, उसमें बच्चा लाइक मोबाइल वीडियो गेम की तरह ही उस कॉन्टेंट के साथ खेलता है। यही बच्चा खेला होता है, बाकी सारी क्लास अटेंटिव हो रही होती है, उसके साथ गाइड कर रही होती है, बच्चों की आवाज सुन के बच्चा खुद डिसीजन कर रहा था मैंने कौन सा स्टेप लेना है अगला, और बच्चे गाइड कर रहे होते हैं उसको।
उन्होंने कहा कि इस वक्त पंजाब के प्राइवेट स्कूलों में एक बच्चे की तालीम पर महाना तकरीबन 1650 रुपए और बलोचिस्तान में लगभग 3200 रुपए खर्च हो रहे हैं, जबकि उनका सिस्टम वही तालीम सिर्फ 500 रुपए में फराहम कर रहा है।
ये तो बहुत लो कॉस्ट और हाई इम्पैक्ट सोल्यूशन है एंड इट्स वेरी क्विक फिक्स। आप हमारे प्राइमरी स्कूल है, फर्स्ट 200 बच्चे नॉर्मली प्राइमरी स्कूल में होते हैं, इट वुड जस्ट टेक 1 million rupees। स्कूल को आप इंटरेक्टिव लैब दे सकते हैं आराम से, उसमें कंप्यूटर भी है, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड भी है, उसमें प्रोजेक्टर भी है, उसमें इंस्टॉलेशन भी है, उसमें कंटेंट की लाइसेंसिंग भी है, उसमें पावर सप्लाई भी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी है, ये सब चीजें दे देते हैं उसके वन टाइम कॉस्ट में। नॉर्मली $3 से कम है पर चाइल्ड पर मंथ, यू डोंट नीड बिग इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन गवर्नमेंट के 2-3-4 कमरे भी काफी हैं, बच्चे बारी बारी इंटरेक्टिव लैब में आए, अपनी क्लास हैं 2 घंटे की वापस चले जाएं, बहुत इजी किस्म का सोल्यूशन है।
डॉक्टर जफर कादिर ने बताया कि ई लर्निंग सिस्टम किसी भी स्कूल में सिर्फ 10 लाख रुपयों में बहुत आसानी से और बहुत तेजी से नस्ब हो सकता है, और इसी वजह से अब विफाक और पंजाब की हुकूमतों ने फाउंडेशन की मदद से ये सिस्टम अपने स्कूलों में मुतारिफ कराने का सिलसिला शुरू कर दिया है,
जिसमें इस्लामाबाद के 411 स्कूल हैं फेडरल गवर्नमेंट के, ये इस्लामाबाद मॉडल स्कूल कहलाते हैं। इन स्कूलों में हम डिप्लॉय करने जा रहे हैं तालीम फाउंडेशन का टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन मॉडल, जो हम कहते हैं इंटरेक्टिव लर्निंग सोल्यूशन ILS। ILS हम इस्लामाबाद जिले के 8 स्कूलों में डिप्लॉय कर चुके हैं, 9th स्कूल अभी हम नेक्स्ट वीक करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और अगले एक साल में 411 स्कूल हमने उनमें सिस्टम डिप्लॉय करना है तालीम फाउंडेशन का, जो कि प्योरली बलोचिस्तान मेड इन बलोचिस्तान मॉडल है, होम टोटली इंडिजिनस, टोटली लोकलाइज्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का उसका कॉन्टेंट है, और जो हमने कॉन्टेंट डेवलप किया उसमें न सिर्फ विजुअल कॉन्टेंट है बल्कि विजुअल एनिमेशन भी साथ है, वीडियोज के वॉइस ऑफ रिकॉर्डिंग भी है, उर्दू में भी है, अंग्रेजी में भी है, असेसमेंट शीट्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, असाइनमेंट्स हैं बच्चे की टॉपिक हर टॉपिक के बारे में, और इसी क्रेडिबिलिटी के बेस पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, वो भी 100 स्कूलों में करना चाह रहे हैं पायलट टेस्टिंग इसी साल में हमारे साथ मिलके, वो भी हमारे लिए खासा बड़ा टारगेट है एक साल का।
उन्होंने कहा कि ई लर्निंग लैब्स सिर्फ तालीम के लिए ही नहीं बल्कि स्कूल के बाद वोकेशनल ट्रेनिंग या ई क्लिनिक के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती है।
शाम को स्कूल टाइम के बाद वही लैब स्किल सेंटर के तौर पे भी काम आती है, फॉरेन लैंग्वेजेस शाम को पढ़ाते हैं ऑनलाइन, आप उनको कोर्सेज करते हैं अकाउंटिंग कोर्सेज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, वेब डिजाइनिंग के, ग्राफिक डिजाइनिंग के, प्रपोजल राइटिंग के, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के, اور کافی چیزیں جو اسکل آپ دے سکتے ہیں ان کو. ابھی ہم نے ووکیشنل ٹریننگ کو لنک کی ہے یونیورسٹی کے فیشن ڈیزائن کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. دور دراز علاقے میں جہاں پہ ڈاکٹر نہیں ہے تو وہاں پہ اب شام کو ایک کمرے کو آپ ایسٹ کلینک میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹروں کو آن لائن لے لیں اسکائپ کے ساتھ کنسلٹیشن دینا شروع کر سکتے ہیں. اٹ ول بی انٹیگریٹڈ رورل ڈیولپمنٹ ماڈل بیسڈ آن ایجوکیشن لیب انٹریکٹیو لیب.
یہ تھے بلوچستان کی تعلیم فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر اور چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر ڈاکٹر ظفر قادر، جن کا بلوچستان کے اپنے ایک دیہی اسکول میں متعارف کرایا ہوا ای لرننگ سسٹم اب پاکستان کے سینکڑوں اسکولوں میں متعارف کرایا جا رہا ہے. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.